राम हरे राम 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 हरे हरे। सो प्रिय पंचशील भक्तवृंद, दामोदर दीक्ष और सनातन दीक्ष भक्तवृंद, हम भागवत के प्रार्थनाओं में 8वें स्कंद के 22वें अध्याय में बलि महाराज साक्षात भगवान वामन देव को बहुत दुर्दशा में है। सब कुछ लूट गया है, राज चला गया है, स्वर्ग आदि चला गया है, वरुण पांच में बंधा हुआ है, परंतु फिर भी भगवान की जो प्रार्थना कर रहा है उसके 10वें श्लोक का पाठ कर रहे हैं। इथम स निश्चित पिता महो महान अगाध बोध भवत पाद पदमम धौर्वम प्रपेद ही अकुतो भयम जना भीतः स्वपक्षः क्षपणस्य सतम्। इत्थम, इस प्रकार जैसे पहले कहा गया है, वो जो प्रहलाद महाराज हमारा पितामह है, उसने निश्चय कर लिया किस बात का कि भगवान का शरण लेना है। ये वो मेरे पिता, मैंने निश्चय कैसे निश्चय क्यों किया कि एक तो वो महान भक्त थे और दूसरे अगाध बोध थे, उनको आपकी कृपा से नारद जी ने भक्ति का गहरा ज्ञान दिया था, उसने आपके पाद पद्म का शरण लिया। ध्रुवम, जो ऐसा अटल है जिसको कभी छोड़ा नहीं जा सकता है, उसका शरण ले लिया। प्रपेदा प्रपेदा प्रपन्ना शरण लिया। अकुतो भयम, और वास्तव में वो भय से मुक्त हो गए पूर्ण रूप से, और वो कभी भी जनात भीतः स्वपक्ष क्षपणस्य, वो सामान्य लोगों से संग करने से भयभीत होते थे क्योंकि वो संसार में बंधन में डालेंगे। स्वपक्ष क्षपणस्य, भगवान जिन्होंने असुरों को मार दिया, सत्तमा ओ सबसे महान भगवान। सो बलि महाराज कह रहे, मेरे पितामह जो महान भक्त प्रहलाद महाराज, जिनके पास अगाध भक्ति का ज्ञान था, जिसको जिन्होंने आपका पूजन करके आपका शरण लिया और सामान्य लोगों से मिलने से भयभीत होता था, उनको ये निश्चय हो गया कि आपके चरणों का शरण ही एकमात्र जीवन का परम लक्ष्य है। उसने अपने पिता के इच्छा के विपरीत ये कार्य किया। उसके असुर मित्र भी इसके इस कार्य में शामिल नहीं थे, और आपने ही भगवान उनके पिता का वध किया। हे सतामा, हे महान भगवान, मेरा पितामह महान भक्त प्रहलाद महान भक्त था, अगाध ज्ञान था, भौतिकवादियों के संग से, संसारी लोगों के संग से अपने आप को दूर रखता था, भयभीत होता था, उन्होंने आपके चरणों का शरण लिया, उनका भय नाश हो गया। उन्होंने आपका शरण लिया जो उनके कुल के नाशक हो। कुल के नाशकों का मतलब असुरों के कुल को नाश किया, उसके पिता को, उसके ताऊ को, हिरणाकश को, हिरणाकशिपु को आपने मारा, फिर भी उन्होंने अपने परिवार का पक्ष न लेके आपके शरण लिया। स्वपक्ष क्षपणस्य का मतलब है असुर कुल का नाशक भगवान। 11वें श्लोक में लिखा है, तथाहमपि आत्मरिपो त्वान्तिकं दैवेन नीतः प्रसभं त्याजित श्रीः इदं कृतान्तकान्तिकः वर्ति जीवितम्। यया ध्रुवम स्तब्ध मतिर्न बुद्धये ते बुद्ध्यते, तथा इसलिए अहम मैं अभी आत्मरिपु आप जो हमारे कुल के शत्रु हैं, भगवान वामन देव और भगवान विष्णु आप हमारे असुर कुल के शत्रु हैं, आत्मरिपु तव अंतिकम मैं आपका शरण लेता हूं। मैंने अपनी इच्छा से नहीं लिया है, देवेना, ये तो पता नहीं कैसे देवेना, ये तो भगवान कैसे मैंने आपका शरण लिया, मेरी इच्छा से नहीं लिया है, नियत खींच के लाया गया हूं मैं आपके शरण में। मेरे देवेन का मतलब है प्रोविडेंस, प्रोविडेंस का मतलब हमारे भाग्य से, प्रसभम बड़े बल से लाया गया हूं, इच्छा से नहीं आया हूं। त्याजित श्री, मेरा सारा धन वैभव मुझसे हर लिया गया, इदम ये जीवन का जो दर्शन है, कृत अंत अंत के वर्ती, मृत्यु तो वैसे भी सबसे सब कुछ हर लेता है, कृत अंत अंतिक वर्ती, जब मृत्यु आती है तो सब कुछ वैसे भी हर लेती है, जीवितम जीते जी यया ये सारा मेरा भोग ऐश्वर्य राजपाठ अध्रुवम, सदा रहने वाला तो था नहीं, स्तब्धमति ही मैं जो अहंकारी बुद्धि वाला कम बुद्धि वाला था, न बध्यते समझ नहीं सका, न बुध्यते समझ नहीं सका, ये तो सौभाग्य है कि मैं बलात् आपके चरणों के शरण में लाया गया हूं और मेरा सारा वैभव मुझसे छीना गया है। सामान्य जन जो भौतिक स्थिति में जीते हैं, चाहे दुर्घटनावश मृत्यु आ जाए जो हर समय आती रहती है, वो इस जीवन के इस अस्थाई अनित्य दर्शन को नहीं जानते हैं। ये तो सौभाग्य से मैं ऐसी दुर्दशा से बच गया, क्योंकि मृत्यु वैसे भी सर्वहर्ष चाह में सब हर लेता है, आपने स्वयं हर लिया और मुझे अपने चरणों में खींच लिया, ये तो मेरा सौभाग्य है, ये केवल मेरे सौभाग्य के कारण मैं आपके चरणों की ओर बलात् खींच के लाया गया हूं, मेरे धन वैभव राज से मुझे वंचित किया गया है, और किसने किया है, मेरी मेरे कुल के शत्रु ने किया है, आप मेरे कुल के शत्रु हो। धन और वैभव जिसके मति को बुद्धि को अंधा कर देता है, वो जीवन की अस्थायीपन को नहीं जानते, जीवन नित्य नहीं है ये नहीं जानते हैं वो। जहां मृत्यु निरंतर कदम कदम के ऊपर है, पर फिर भी लोग समझते हैं कि सब कुछ हमारे पास रहेगा। चक्रवर्ती पाद लिखते हैं, आत्मरिपु का अर्थ है हमारे कुल के शत्रु। असल में ये भगवान की महिमा गा रहा है, निंदा नहीं कर रहा है, ये निंदा के नाम में महिमा है, इसको कहते हैं व्याज स्तुति, करते निंदा है परंतु है उनकी सराहना, है उनका गुणगान, क्योंकि भगवान ही सबके सुहृद है, सबके उत्तम मित्र हैं। दूसरा आत्मा का अर्थ अगर ये लें, भौतिक शरीर और इसके अंदर सूक्ष्म शरीर, तो भगवान हमारे स्थूल और सूक्ष्म शरीर के तो शत्रु हैं ही, क्योंकि जब भक्ति करेंगे तो इन दोनों को नाश कर देंगे, तभी तो भगवान के धाम जा पाएंगे। इस भौतिक शरीर के साथ तो जा नहीं सकते, और न ही सूक्ष्म शरीर जब तक मन बुद्धि अहंकार का रहेगा तब तक भगवत धाम जा सकते हैं। तो आत्मरिपु का यह भी अर्थ हो सकता है कि भगवान हमारे स्थूल और सूक्ष्म शरीर के घातिक शत्रु हैं, क्योंकि जब उनको नाश करेंगे तभी मुक्त होंगे, नहीं तो मुक्ति नहीं होगी। और इसका एक अर्थ हो सकता है कि आत्मा का अगर अर्थ अहंकार लिया जाए तो हम आप अहंकार के नासिक हैं, अहंकार के शत्रु हैं, आपके भक्तों में अहंकार आपसे देखा नहीं जाता। आपने मेरे बहुत भारी रोग की चिकित्सा की है, मैं समझता था कि मैं तीनों लोकों का स्वामी हूं, ये मेरी मूर्खता थी, तीनों लोकों के स्वामी तो आप हैं। देवेने का अर्थ है कि ये मेरा सौभाग्य है कि मैं प्रहलाद के कुल में जन्म लिया, इसी के लिए आपने मेरे ऊपर ये कृपा की है। धन जिसके बुद्धि को अंधा कर देता है, धन मद में अंधा जो हो जाता है, वो ये शरीर अनित्य है ये भूल जाता है। मैं सौभाग्य से आपको प्राप्त कर चुका हूं, आप धनवंतरी के समान हैं और आप मेरे रोग की चिकित्सा बहुत अच्छी तरह से कर रहे हैं, मैं संतुष्ट हूं। प्रभुपाद जी लिखते हैं, बलि महाराज ने भगवान श्री वामन देव के द्वारा जो कार्य किया गया, जो उनका राजपाट हर लिया गया और जो उनके कुल में भगवान ने हिरण्यकशिपु आदि का वध किया, सभी भगवान के शत्रु थे, केवल दो ही असुर कुल में भगवान के शत्रु नहीं थे, एक था प्रहलाद महाराज, एक बलि महाराज, अन्य सारा असुर कुल भगवान विष्णु का अपना खानदानी शत्रु, कुल का शत्रु मानते हैं। जैसे बलि महाराज यहां वर्णन कर रहे हैं कि वास्तव में भगवान विष्णु हमारे शत्रु नहीं है, हमारे परिवार के शत्रु नहीं है, कुल के शत्रु नहीं है, हमारे कुल के घनिष्ठ मित्र हैं। क्यों? क्योंकि भगवान ने भागवत के दसम स्कंद के 88 अध्याय के 8वें श्लोक में अपनी मित्रता का वर्णन किया है। वो श्लोक क्या है? यस्याहम अनुग्रहाणामि हरिष्य तद्धनम शनैहि, जिसके ऊपर मैं अति अनुग्रह करता हूं, बहुत स्नेह करके कृपा करना चाहता हूं, उसका सब भौतिक मान सम्मान धन हर लेता हूं। ये श्लोक प्रभुपाद जी ने जब पढ़ा था भागवत में, उस समय प्रभुपाद जी का जो दवाओं का कारोबार था वो छिन्न भिन्न हो गया था, परिवार वाले सब उनसे परेशान थे और अच्छे खासे व्यापारी व्यक्ति सड़क पे आ गए थे। और जब प्रभुपाद ने ये श्लोक भागवत का पढ़ा तब समझा कि भगवान ने बहुत बड़ा अनुग्रह किया है, ये सब छन छीन लिया है, अब मेरे धन के संगी संबंधी सारे मेरे से हाथ निकाल लेंगे और जब कोई नहीं रहेगा तो भगवान का एक शरण लेने का सौभाग्य प्राप्त होगा। और इसका प्रभुपाद को अनुभव और प्रभुपाद इसी रास्ते में चले और यही बात बलि महाराज कह रहे हैं। विशेष किसी के ऊपर मैं सहयोग कृपा करता हूं, सहायता करता हूं, तो फिर मैं उसके भौतिक चीजों को आस्ते आस्ते करके हर लेता हूं। बलि महाराज भगवान के ऐसे व्यवहार को जिसमें उन्होंने सब कुछ छल करके हर लिया उसकी सराहना कर रहे हैं, गुणगान कर रहे हैं। इसलिए कहते देवेन नीत प्रसभम त्यजित श्रीह, सौभाग्य से बलात् आपने खींच लिया, किसको, मेरे धन को, मेरे ऐश्वर्य को, मेरे मान सम्मान को कहां खींच लिया, आपके चरणों में आपने मुझे सनातन जीवन की ओर खींचा, आध्यात्मिक सही पथ पे आप मुझे लाए। आपने ऐसी परिस्थिति में डाला कि भौतिकता के भोग से मेरे को आध्यात्मिकता के आपके चरणों के नित्य जीवन के स्तर पे आप लाए। प्रभुपाद कहते वास्तव में हम सबको भयभीत होना चाहिए, किसका, तथा कथित समाज का, मित्रता का, प्रेम का, उसमें हम दिन रात मेहनत करते हैं, कहते ये हमारे साथी हैं, हमारा सहयोग करेंगे। परंतु बलि महाराज यहां कह रहे हैं जनाद भीत, हर भक्त को जो कृष्ण भावना में है उसको सामान्य लोगों के संग से भयभीत होना चाहिए। कौन से लोग, को जो केवल भौतिक धन संग्रह और भोग के पीछे लगे हुए हैं, इसको कहते हैं जो कृष्ण अभक्त है और माया में लिप्त है, उनका संग नहीं करना चाहिए। जो ऐसे लोगों का संग करते हैं उसको परमत्त कहते हैं, परमत्त मतलब पागल कहते हैं। और वो किसके पीछे भागते हैं, ये अंग्रेजी कहावत है विल ओ द विस्प, इसका मतलब क्या है, विल ओ दी विप, विल ओ दी विस्प, इसका अर्थ क्या है, वो एक कहा जाए कि मरुभूमि में पानी दिखता है उसको पीने के लिए भाग रहे हैं, जब वास्तव में पानी है ही नहीं, मृग तृष्णा की दौर भाग रहे हैं। वो ये नहीं जानते हैं कि बड़े परिश्रम करके सब कुछ कमाएंगे फिर भी ये शरीर छोड़ना पड़ेगा, और ये भी पता नहीं है कि दूसरा शरीर कौन सा मिलेगा। परंतु जो पूर्ण रूप से कृष्ण भावना में स्थित हैं, कृष्ण भावना के दर्शन को जानते हैं, सिद्धांत को जानते हैं, वो अपने जीवन के लक्ष्य को जानते हैं, वो कभी भी ये जो पशु वाली दौड़ लगी हुई है, डॉग रेस, भागा दौड़ी में इससे मैं आगे बढ़ जाऊं, उसमें नहीं भाग लेते। अगर कहीं कोई ऐसा भक्त अचानक ऐसे संग में जाने के कारण पतन के रास्ते में चला भी जाए तो भगवान उसको गिरने से बचा लेंगे। अदांत गोभी विस्ताम तमिश्रम पुनस पुनस चर्वे चरवणा नाम, प्रहलाद महाराज की शिक्षा है। अदांत गो भी, जिसकी इंद्रियां बस में नहीं है, विषताम तमश्रम, वो तो जा रहे हैं नरक की ओर। पुनस पुनस चर्वितम चर, जो चबाया हुआ है, जिसमें से रस निकल गया है, गन्ने से जूस निकाल के फेंका है, उसको फिर चूस रहे हैं। ये संसार में सब चबे को चबा रहे हैं। मालूम है कि हमारे बूढ़े बुजुर्ग बच्चे थे, बड़े हुए, घर बनाया, कमाया और मर गए। अब हम भी ऐसे ही बच्चे थे, घर बनाया, कमाया, मर जाएंगे, तो ये तो चक्कर चलता ही रहेगा। ये तो चबे को चबा रहे हैं, इस रास्ते में चल रहे हैं, भगवान को कब पाएंगे। तो भौतिकवादी जीवन जो है वो कुछ भी नहीं है, केवल एक पशु का दौड़ है जिसमें एक दूसरे से आगे जाना चाहते हैं लेकिन लक्ष्य का कुछ पता नहीं है, चबे को चबा रहे। ऐसे जीवन में कोई लाभ नहीं है। परंतु इंद्रियां वश में नहीं है तो इसके अंदर उनको बहुत सुख दिखता है। लोग शराब पी के भी सुखी होते हैं, लोग रात को जाग कर क्लबों में नाचकर भी खुश खुश होते हैं। तो ये जो खुशी है ये इंद्रिय तृप्ति वाले लोगों को प्राप्त होती है, परंतु वो जो नहीं जानते हैं कि ये क्या है, न्यूनम प्रमथ कुरते विक्रमा। ऋषभदेव कहते हैं वो बहुत बड़ा पाप कर्म कर रहे हैं, इंद्रियां वश में नहीं है, पाप कर्म कर रहे हैं, और जो दूसरा जन्म मिलेगा बहुत दुखदाई होगा। इसलिए बलि महाराज ने, भगवान ने उनको ऐसे दुर्दशा से बचा लिया, अज्ञान के जीवन से बचा लिया। इसलिए वो कहता है कि मेरी बुद्धि कुंठित हो गई थी, मैं समझ नहीं पा रहा था। स्तबधि मति न बुद्ध्यते, मेरी मति स्तबध हो गई थी, मूड हो गया था, मैं समझ नहीं पाया आपकी कृपा को, नहीं समझा कि कैसे भगवान मेरा हित करना चाह रहे, भगवान अपने भक्तों का कैसे भला करते हैं, कैसे सहयोग करते हैं। बलात् उनके भौतिक जीवन को काट देते हैं। एक भागवत में श्लोक है भगवान की लीला का, असमय मुंचांत वत्सान। एक गोपी कहती है कृष्ण हमारे घर में आते हैं, गाय के दुहने के समय से पहले ही हमारे बछड़ों को खोल देते हैं, वो गाय का दूध पी जाते हैं। तो महात्मा कहते हैं भगवान इतने दयालु हैं, वत्स भक्त को कहते हैं, वो अपने कर्मों के कारण पता नहीं कब इस संसार से मुक्त होगा, उनको पहले ही उनके कर्मों के बंधन से मुक्त कर देते हैं और अपने चरणों का अमृत पिला देते हैं। तो ये भगवान की कृपा है, ये है संतों का इस श्लोक के ऊपर भाव। और श्लोक की कथा तो ये है कि एक गोपी बड़ी चतुर थी, अपने ही मूढ़े के नीचे, कुर्सी के नीचे मक्खन की माटी रख दी, जाते हुए कन्हई और सखाओं को कहा कि हमने सुना है आपको मक्खन का पता लगता है कहाँ छुपा हुआ है, आज आप मेरे घर में मक्खन को ढूंढ के निकालो तो मैं समझूंगी कि आप मक्खन के सुगंध को सूंघ लेते हैं। श्री कृष्ण समझ गया कि ये तो बैठी है इसी मूढ़े के नीचे, मक्खन का मटका है। कृष्ण ने ग्वाल वालों को कहा इसके बछड़े खोल दो, जाके गैया को दूध पिए, और जैसे बछड़ों को खोले बछड़ा गए गैयों का दूध पीने, और गोपी को कहते हैं ए बावरी गोपी तू बैठी मूढ़े पे आराम कर, वो देख बछड़े गाय का दूध पी हा हा करके भागी, जाके बछड़ों को बांधने लगी। तब तक कन्हैया ने मटकी निकाल के उसी मूढ़े के ऊपर बैठ के खाना शुरू किया। गोपी लौट के आई तब तक देखे मटकी भी मुखा मकमा माखन चोर के हाथ में, और खा भी रहा है और सखों को खिला भी रहा है। तो ये बहुत बड़ी चतुराई से गोपी के बछड़ों को खोल के उनके कुर्सी के नीचे से मटकी कृष्ण ने निकाली थी। परंतु इसका भाव ये है कि भक्तों को भगवान संकट से मुक्त कर देते हैं। सुखदेव महाराज कहते हैं हे कुरुश्रेष्ठ महाराज परीक्षित, बलि महाराज जब अपने सौभाग्य का ऐसे वर्णन कर रहे थे तो उस समय प्रहलाद महाराज वहां प्रकट हुए। वो ऐसे लग रहा था कि संध्या काल के समय रात का जैसे चंद्रमा का उदय हो। तो भक्त जब आता है तो चारों ओर शीतलता फैलाता आता है, तो उस समय उगते हुए चंद्रमा की तरह रात के अंधकार को चीरते हुए जैसे चंद्रमा प्रकट होता है, ऐसे बलि महाराज के बंधे हुई सभा में जहां वो भगवान की इस कृपा करुणा का वर्णन करके प्रार्थना कर रहे थे, वहां प्रहलाद महाराज प्रकट हुए। अब प्रहलाद महाराज क्या कहेंगे इसकी कथा फिर करेंगे, कथा को यहां विराम देते हैं। और बलि महाराज ने प्रहलाद महाराज को जैसे देखा, वो बड़े भाग्यशाली पुरुष थे, उनका अंग सांवला था, आंखों में जो काजल डालते हैं ऐसा था, बड़े लंबे थे, बहुत सुंदर पीला धोती पहना हुआ था, लंबी लंबी भुजाएं थी, सुंदर आंखें थी कमल के पत्ते पंखड़ियों जैसी, और उसको देख के सभी प्रसन्न हो गए, सबको आनंद दे रहे थे। बलि महाराज वरुण पास में बंधा हुआ था, वो अपने पितामह प्रहलाद महाराज को प्रणाम भी कर नहीं पाया, उन्होंने केवल सर को ही झुका के प्रणाम किया, आंखों में आंसू आ गए और अपना सर झुका लिया अपनी स्थिति के कारण, ऐसी स्थिति थी इसमें। श्री प्रभुपाद जी लिखते हैं, क्योंकि बलि महाराज वामन देव के द्वारा बंदी बनाए गए थे, तो उन्होंने समझा मैंने भगवान का कोई अपराध किया है, बलि महाराज ने ऐसा ही सोचा, और इसलिए प्रहलाद महाराज के आने के ऊपर उनको गिलानी होने लगी और वो शर्मिंदा हो रहे थे, लज्जित हो रहे थे। प्रहलाद महाराज को देखकर वो लज्जित हो गए, उन्होंने लगा कि मैंने अपराध किया इसलिए मेरे को बांधा गया है, मेरा पितामह ऐसे समझेगा। और इसलिए भी लज्जित हो गया कि प्रहलाद महाराज का मैं पोता हूं, मैंने उनकी शिक्षाओं को ठीक तरह क्यों नहीं समझा, मैं दान देने के समय अहंकार क्यों किया, इसलिए उनका सर नीचे झुक गया। जब प्रहलाद महाराज ने देखा भगवान वहां विराजमान है और चारों ओर उनके पार्षद नंद सुनंद आदि उनकी पूजा कर रहे हैं, उनसे घिरे हुए हैं, तो भगवान का दर्शन करके वो तो भाव विभोर हो गए, आंखों में अश्रु आ गया, रोमांच हो गया, और सीधा ही दंडवत करके भगवान को प्रणाम किया, अपना पूरा शरीर डंडे की तरह नीचे गिर पड़े और भगवान को प्रणाम किया। अब प्रहलाद महाराज क्या कहेंगे इसकी कथा आगे चलेगी। हरे कृष्णा। कल प्रहलाद महाराज की प्रार्थनाओं का वर्णन करेंगे। धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरि बोल। और कोई किसी का प्रश्न जिज्ञासा है?